अध्याय 17 श्रद्धा के तीन विभाग। जैसे हम लोग 14वें अध्याय में तीन गुणों के बारे में चर्चा किए थे, यहां पर उसी तीन गुणों का अनुसार तीन प्रकार के श्रद्धा होते हैं। तो उसका यहां पर वर्णन हो रहा है। ये श्रद्धा क्या है, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके थे। श्रद्धा क्या है, और श्रद्धा का अर्थ क्या है? सुदृढ़ निश्चय। वो है, वो सर्वोच्च परिभाषा है श्रद्धा का। लेकिन सरल से हम लोग उसका अर्थ समझेंगे तो श्रद्धा मतलब रुचि या आकर्षण, उसको श्रद्धा कहते हैं। सो जैसे हम लोग उस श्लोक को उल्लेख करके चर्चा कर रहे थे ना, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। गुरु क्या करते हैं, गीता भागवत से उपदेश देकर हमारे अंदर कृष्ण को कृष्ण की कृष्ण भक्ति करने के लिए आकर्षण जागृत करते हैं, वही श्रद्धा। तो इसलिए यहाँ पर तीन प्रकार के जो लोगों का जो आकर्षण होता है उसके बारे में वर्णन हो रहा है। रुचि कैसे होता है उसका यहाँ पर भगवान वर्णन करेंगे, तीन प्रकार के गुणों के अनुसार, तीन गुणों के अनुसार। तो श्री प्रभुपाद इसके बारे में पहले तो बताया उन्होंने, लेकिन क्षेत्र के अंतिम श्लोक के दफ्तर में पहले श्लोक में भी आ रहा है। हम लोग जब पहले श्लोक को चर्चा करेंगे तब उसको चर्चा करेंगे। बद अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण बाणामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीन गुणों को पार कर जाता है। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई है। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए प्रयुक्त उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब काल क्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे, इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। श्लोक क्रमांक 1। तो इस अध्याय में इतने सारे विभाग किए गए। पहले भगवान 3 प्रकार के श्रद्धा का वर्णन करते हैं, इसके बाद में 3 गुणों में आहार इसका वर्णन करते हैं, सत्व रजत तमोगुण में कैसे आहार होता है, और 3 गुणों में योग्य, और 3 गुणों में शरीर वाणी एवं मन की तपस्या। पहले वो शरीर वाणी और मन की क्या तपस्या होता है वो वर्णन करते हैं, फिर उसके बाद में तपस्या का 3 गुणों में वर्णन करते हैं, और 3 गुणों में दान, उसके बाद में दिव्य श्रद्धा। वैसे ये सब कुछ दिव्य श्रद्धा में किया जा रहा है। तो जो श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़, श्रद्धा शब्द कहे विश्वास, ठीक है, सुदृढ़ शब्द कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्वकर्म कृता हो, वो कहाँ आता है? यह दिव्य श्रद्धा। सामान्य शब्द, श्रद्धा का सामान्य शब्द का अर्थ है, सामान्य अर्थ क्या होता है? आकर्षण या रुचि। तो श्लोक क्रमांक 1। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्कृत्या यजन्ते श्रद्धयान्विता अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों को पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? ये सदोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी? तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। इस प्रश्न के लिए, प्रश्न का अर्थ समझाने के लिए श्री प्रभुपाद चलते अध्याय में जाते हैं, और वहां पर बताया गया है कि जब श्रद्धा पूर्वक कोई यज्ञ करते हैं तो धीरे धीरे हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, या वो ज्ञान में परिपूर्णता प्राप्त होता है। श्रद्धा व लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिते नादि गच्छति। सो श्रद्धा व लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान व्यक्ति है उसको ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसे वो कहा जाता है। तो वो श्रद्धा के बारे में होता है, और 16वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि जो असुर लोग क्या करते हैं, वो शास्त्र विधि को पालन नहीं करते हैं, या शास्त्र विधि वर्तते कामकारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परामृते। अभी श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा से, श्रद्धा के कारण क्या हो जाता है, हम लोग परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं, ज्ञान में परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं। और एक जगह बताया गया है कि वेदों को पालन नहीं करने से, शास्त्रों को पालन नहीं करने से हमें कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होता, कोई परिपूर्णता प्राप्त नहीं होता। अभी कोई श्रद्धावान है लेकिन क्या है, उनको कोई शास्त्र को पालन नहीं करते, उनका क्या स्थिति होगा? ऐसे यहाँ पर अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछ रहे हैं। अब यदि कोई एक ऐसे निष्ठावान व्यक्ति जो है, जो ऐसे कपित या नियमों का पालन करता है, हो, जिनका शास्त्रों में उल्लेख न हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी? अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को छूकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा टिकाते हैं, सतो रजो या तमोगुण में पूजा करते हैं, क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्धावस्था प्राप्त हो पाती है? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं? जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं का देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन इन प्रश्नों को कृष्ण से पूछ रहा है, रहे है। श्री भगवान उवाच, त्रिविधा भवती श्रद्धा, देहिनां स स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तांशु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स स्वभावज, स्वभावज ज मतलब जन्मा हुआ, स्वभावज या सो स्वभाव। स्वभाव क्या होता है? पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार हमारा एक ये एक शरीर प्राप्त होता है, सूक्ष्म और स्थूल शरीर प्राप्त होता है, तो वो गुणों के उसको स्वभाव कहते हैं, एक नेचर बोलते हैं ना, स्वभाव कहते हैं, वो गुणों के अनुसार, तीन गुणों के अनुसार होता है। तो जैसे स्वभाव के अनुसार भी क्या होते हैं, तीन प्रकार के श्रद्धा होते हैं। अंत में क्या है, वो तीन प्रकार के गुणों के अनुसार तीन प्रकार के श्रद्धा होते हैं। तो उसको सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा, इनके बारे में, इन विषयों के बारे में अभी सुनो क्या रहे। तो अर्जुन का प्रश्न था कि कोई व्यक्ति श्रद्धावान रहते हैं लेकिन वो वेदों को पालन नहीं करते हैं, तो वो उनके बारे में वो समझना चाहते थे कि क्या वो सतोगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है। तो भगवान अभी तीन प्रकार के श्रद्धा का वर्णन करते हैं। तो इस तात्पर्य में श्री प्रभुपाद वो कैसे है करते हैं, वो कैसे एक व्यक्ति के स्वभाव को बदला जा सकता है, तो स्वभाव को कैसे बदला जा सकता है। हालांकि एक व्यक्ति ऐसे रजत तमोगुण या सतोगुण के स्वभाव में हो, जब वो ऊपर कहते हैं आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक गुरु और शास्त्र के आदेश विधि विधान को पालन करते हैं, तो उनकी मनोवृत्ति बदल सकती है। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है, तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वह उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में स्वभाव को बदल सकते हैं। स्वभाव को नहीं बदल सकते तो क्या होगा, हम लोग कभी भी हमेशा भौतिक जगत में ही रहेंगे, है ना। कृष्ण भावनामृत का अर्थ होता है हमारे स्वभाव को बदलना। तो ये अर्थ तो श्लोक क्रमांक 3, सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो श्रद्धया एव सः। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा गया जाता है। तो यहाँ पर बता रहे भगवान, श्रद्धा मयो यम पुरुषो, तो हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ श्रद्धा रहता है। क्यों? सत्वानुरूपस्य सर्वस्य, अस्तित्व के अनुसार, या दूसरे शब्दों में जीव के अस्तित्व के ये जो श्रद्धा है जीव के, इट इज इंटीग्रल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिविंग एंटिटी। जीव के अस्तित्व का एक अंश है, प्रमुख अंश है श्रद्धा। तो प्रॉपर कभी कभी ऐसे बोलते थे ना, लाइफ सिम्टम्स। तो ये एक लक्षण है जीवन का। तो हमारे अस्तित्व के अनुसार श्रद्धामयम पुरुष, जीव में श्रद्धा होना ही चाहिए। तो अभी आधुनिक समाज में लोग, विशेष करके वैज्ञानिक जगत में लोग कहते हैं कि रिलीजन इज फेथ। वो वो रिलीजन शब्द का, अंग्रेजी जो शब्द है रिलीजन, उसका शब्द कोश में आप उसका अर्थ देखेंगे तो क्या बताते हैं वो लोग, फेथ बोलते हैं। फेथ मतलब श्रद्धा। लेकिन हाँ, वहां पर उस श्रद्धा का अर्थ होता है जो अंधश्रद्धा है। और श्रील प्रभुपाद इसको भूमिका में वर्णन करते हैं ना, भगवद्गीता के भूमिका में वर्णन करते हैं ना रिलीजन शब्द का अर्थ। तो ये अंधश्रद्धा है या डॉग्मा, किसी को कुछ प्रश्न किए बिना, जिज्ञासा किए बिना ऐसे अंधश्रद्धा से स्वीकार करना, वो धर्म है, रिलीजन है। तो वो विशेष करके पाश्चात्य देशों में जो धर्म को या रिलीजन को ऐसे प्रचार किया गया, ईसाई धर्म विशेष करके, जो भी कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, सिर्फ स्वीकार करेगा उसको। इसलिए वैज्ञानिक लोग क्या कर गए, उसके ऊपर गिर पड़े वो लोग, और उन्होंने बताया ये सब बकवास है। और विज्ञान क्या है, विज्ञान को उन्होंने कैसे उन्होंने कैसे परिभाषा दिया, उसको कैसे विश्लेषण किया वो लोग, कि विज्ञान क्या है, श्रद्धा नहीं, वो सिर्फ तर्क के आधार पर है, लॉजिक एंड रीजन, रैशनल। तो तर्क के आधार पर आधारित है, तो इसलिए ये सत्य का प्रतिपादन करता है, ऐसे उन्होंने प्रचार किया उसको। सो श्रद्धा का कोई जरूरत नहीं, फेथ इज नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, ऐसा श्रद्धा जरूरत नहीं है जो अंधश्रद्धा, लेकिन श्रद्धा को नकार नहीं सकते हैं, वो ये श्लोक में बताएगा। सत्वानुरूप को वो हमारे अस्तित्व से उसको अलग नहीं कर सकते हैं, अस्तित्व का एक अंश है श्रद्धा। हालांकि वैज्ञानिक लोगों ने ऐसे वो विज्ञान को ऐसे उन्होंने वर्णन किया, विश्लेषण किया, लेकिन क्योंकि ये श्रद्धा जो अस्तित्व से उसको भिन्न नहीं कर सकते हैं, इसी कारण क्या हो गया, विज्ञान में भी है, विज्ञान में भी श्रद्धा है, ठीक है ना। कोई उदाहरण देंगे, उदाहरण तौर पर चंद्रमा के ऊपर हम लोग गए करके हम उसको स्वीकार कर लिया है ना, और उसको हम लोग ये भी नहीं कर सकते, साधारण व्यक्ति उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये लोगों ने क्या प्रचार किया, विज्ञान में कोई ऐसा श्रद्धा की बात नहीं रखा, पूरी तरह से वो सर्क तर्क और सिद्ध किया जाता है, सब कुछ प्रमाणित किया जाता है, लेकिन वो लोग भी यही प्रचार कर रहे हैं अंत में, क्योंकि श्रद्धा को फिर ही अस्तित्व से हमें उसको नकार नहीं सकते, उसको अलग नहीं कर सकते। कोई और उदाहरण विज्ञान में,
सब कुछ जड़ पदार्थ,
वो थोड़ा सिंपल सरल उदाहरण चाहिए हमें, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो उसमें भी श्रद्धा है ना। और कोई सरल उदाहरण, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सरल 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 चीज,
कॉलेज से निकलोगे तो जीवन सफल,
वो दैनिक जीवन में श्रद्धा, वो अगला पॉइंट है, हम उसको चर्चा करने वाले थे, दैनिक जीवन में कैसे श्रद्धा, वैज्ञानिक व जगत में भी श्रद्धा होता है और दैनिक जीवन में भी श्रद्धा होता है और धर्म में भी श्रद्धा होता है। दैनिक जीवन में श्रद्धा, आप ट्रेन में बैठते हो, हर बार आप ट्रेन में या कभी कभी भी आप वो ट्रेन चलाने वाला का ड्राइविंग लाइसेंस पूछते नहीं है, है ना। आप बैठ जाते हैं, आप क्यों वो पूछते नहीं है, क्योंकि सरकार ने इसको लगाया है वो काम करने के लिए, हम एक ऐसे प्रैक्टिकल ज्ञान के आधार पर, व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर उसको हम लोग उसके ऊपर श्रद्धा रखते हैं। तो ऐसे दैनिक जीवन में भी क्या होता है, श्रद्धा होता है। एक श्रद्धा के बिना हम लोग अस्तित्व हो ही नहीं सकता। अभी आप लोग श्रद्धा नहीं है तो एक कदम भी आगे नहीं रख सकते, है ना। उसके नीचे कुछ क्या है, ऐसा गड्ढा है, आप अंदर चले जाएंगे भूलोक पाताल लोक में ऐसे, है ना, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते श्रद्धा के बिना। लेकिन अभी प्रश्न क्या है, अंधश्रद्धा और जो सही श्रद्धा उसके बीच में अंतर करना है। तो हमें अंधश्रद्धा को वो पालन नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप ज्ञान के आधार पर जो श्रद्धा है, जैसे उस दिन उदाहरण चर्चा कर रहे थे हम लोग, दो ब्राह्मण और चमार का जो कथा चर्चा कर रहे थे ना हम लोग, उस व्यक्ति को श्रद्धा है कि भगवान क्या करते हैं, वो सुई की आंख में हाथी क्यों श्रद्धा है, वो उनका श्रद्धा अंधश्रद्धा है नहीं, उनको ज्ञान है भगवान के अचिंत्य शक्ति के ज्ञान है, इसके लिए क्या उदाहरण दिया उन्होंने, वो वट वृक्ष का उदाहरण दिया जिसके पीछे वो अश्वत्थ वृक्ष या वट वृक्ष के पीछे वो बैठे थे ना, उसका उदाहरण दिया। तो भगवान एक छोटे से एक ऐसे बीज में इतना बड़ा वृक्ष को रख सकते हैं और वो बीज वृक्ष बनकर ऐसे करोड़ों करोड़ों बीजों को उत्पन्न कर सकता है, जिसमें एक एक बीज में और भी ऐसे वृक्ष को वृक्ष में बढ़ाने के लिए, वृक्ष के रूप में बढ़ने के लिए शक्ति है। तो भगवान ये कर सकते हैं, ये क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर अचिंत्य शक्ति है। उस अचिंत शक्तियों के ज्ञान के आधार पर उन्होंने क्या किया, उसको स्वीकार किया। तो ये श्रद्धा, ये वास्तविक श्रद्धा, ऐसे श्रद्धा होना चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं होना चाहिए। सिर्फ जो भी बकवास बताया जाता है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। चंद्रमा के ऊपर गए या मनुष्य बंदर थे या ऐसे बहुत बड़ा बिग बैंग हो गया, तो वो सब क्या है, अंधश्रद्धा है। तो है ना, या जीव से रासायनिक वस्तुओं से जीव का सृष्टि होता है, अब तक कोई प्रूफ है ना, है कि नहीं। तो इसलिए अभी क्या हो गया, जो पाश्चात्य देश में जो धर्म को पालन कर रहे वो लोग धार्मिक लोग, उन्होंने वैज्ञानिक के ऊपर आक्रमण कर दिया। पहले वो लोगों ने आक्रमण किया कि ये अंधश्रद्धा है, तो दोनों क्या है, उनको जाके समुद्र में फेंक के आ गया। और भगवद्गीता के ऊपर सब कुछ समझना चाहिए, ठीक है। जो तदाकलित धर्म है या विज्ञान है, दोनों को जाके समुद्र में फेंक के आ गया, क्योंकि सब बकवास, दोनों बकवास हो गए, दोनों अंधश्रद्धा के ऊपर ही आधार है। तो ये सब अंधश्रद्धा है। यहाँ पर ओ सत्वानुरूप, हमारे अस्तित्व के अनुसार श्रद्धा अलग अलग प्रकार के होते हैं। हमारा अस्तित्व अलग अलग होता है, सत्व रज तमो गुण, उसके अनुसार श्रद्धा भी अलग अलग होते हैं। सत्व सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा। लेकिन यहाँ पर श्री प्रभुपाद बताते हैं श्रद्धा का ये जो अस्तित्व के अनुसार अंत में क्या है, या ये श्रद्धानुरूप सत्वानुरूप अस्तित्व के अनुसार, इस शब्द का दूसरा अर्थ भी श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में समझा रहे। तो वो कहते हैं कि सत्वानुरूप मतलब सत्वगुण, अंत में श्रद्धा क्या होता है, सत्वगुण से ही वो जागृत हो जाता है। क्योंकि सत्वगुण शुद्ध रूप में इस भौतिक जगत में नहीं रहता है, तमो रजोगुण का मिश्रण रहता है, इसके कारण वो श्रद्धा तीन भागों में विभाजित हो जाता है और सब कुछ उसके अनुसार होता है। इसलिए दुनिया में इतने सारे धर्म क्यों हैं, वो अलग अलग लोगों का पूजा उपासना होता है या अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के चीज़ों को करते हैं, तो वो ये सब कुछ किसके अनुसार है, ये श्रद्धा तीन प्रकार के श्रद्धा के अनुसार। तो श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, अलग अलग प्रकार के धर्म क्यों हैं, क्योंकि लोग अलग अलग गुणों के प्रभाव में हैं, उनकी श्रद्धा अलग अलग गुणों, श्रद्धा क्या है, अलग अलग है, इसके कारण अलग अलग धर्म भी है, है ना। अभी प्रश्न उठता है ना ऐसे, क्यों इतने सारे धर्म है, भगवान एक ही है तो इतने सारे क्यों धर्म है, क्योंकि श्रद्धा के अनुसार लोग अलग अलग चीज़ों से आकर्षित हो जाते हैं। और भारत में भी हम लोग देखते हैं ना, वैदिक संस्कृति में लोग देवी देवताओं का पूजा करते हैं, क्योंकि उनको आकर्षण अलग अलग चीज़ों से होता है। कोई कोई लोगों को क्या है, एक ऐसा उग्र रूप का भगवान का श्याम सुंदर सुंदर रूप पर उनको उनको आकर्षित नहीं होता, उनको उग्र रूप चाहिए, हाथ में क्या है बहुत सारे हथियार होना चाहिए और जुआ बाहर आना चाहिए और कुछ राक्षसों का हत्या करते रहना चाहिए, हा? वो चित्र अच्छा लगता है, हा? उनकी वो श्रद्धा है ना, या किसी के शरीर में ऐसे कुछ भूत प्रेत आना चाहिए और वो ऐसे नृत्य करना चाहिए, उस चीज से हम लोग भी नृत्य करते हैं कृष्ण बाणों में, उससे आकर्षित नहीं होते हम लोग, वो ऐसे नृत्य से आकर्षित हो जाते हैं शरीर में, हाँ है कि नहीं, ऐसे होता है नेपाल में, होता है कि नहीं, होता है ना, तो ऐसे चीज से लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो वो श्रद्धा के अनुसार तामसी सात्विकी राजसी और तामसी श्रद्धा के अनुसार होता है। इसके बारे में और धर्म यदा यदा धर्म से उस श्लोक के तात्पर्य में भी उस श्लोक के तात्पर्य में भी भगवान वर्णन करते हैं। नहीं, श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी डिड समथिंग, पावर वेंट ऑफ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। This wasted time a lot actually. Mics, you know. Next time it should be taken care. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो उस तात्पर्य में भी प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि धर्म अलग अलग धर्म क्यों है, या अलग अलग वेद अलग अलग शास्त्र क्यों है दुनिया में, क्योंकि लोग अलग अलग स्तर में है, उसके कारण अलग अलग शास्त्र और धर्म होते हैं जैसे प्रभुपाद जी ने बताया, लेकिन वो सभी धर्म है। 2+2=2, ये दो क्या है, चार है, वो भी धर्म, वो भी मैथमेटिक्स है, गणित है, और जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऐसे कुछ ऊंचा चीज वो भी गणित है वैसे ही, लेकिन अंतर क्या है, तो एक आरंभिक अवस्था में होता है बहुत ही, लेकिन एक बहुत ही प्रगतिशील अवस्था में होता है। तो विशेष करके वर्णाश्रम धर्म क्या है, वो तो बहुत ही बड़े छड़े लोगों के लिए धर्म है, और वर्णाश्रम धर्म में भी अलग अलग होते हैं, और जैसे यहाँ पर इस अध्याय में उसका वर्णन। तो श्लोक क्रमांक 4, यजन्ते सात्विका देवान् सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की को पूजते हैं। ओ कुछ और चीज हम लोग छोड़ दिए पिछले तात्पर्य में, तो या नहीं अभी इसका। तो प्रभुपाद इस श्लोक यहाँ पर बोल रहे, इस श्लोक में भगवान विभिन्न बाह्य कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बता रहे हैं। शास्त्रों के आदेश अनुसार केवल भगवान ही पूजनीय है, लेकिन जो शास्त्रों के आदेश से अभिज्ञ नहीं या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपनी गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। तो ऐसे शास्त्रों के आदेशों से अभिज्ञ नहीं है या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे गुणों की स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। ना अभी जो सतुगुण में है वो लोग क्या करते हैं, देवी देवताओं का पूजा करते हैं, जैसे ब्रह्मा शिवा वगैरह वगैरह, सूरज चंद्रमा वगैरह वगैरह, और रजोगुणी यक्ष व राक्षसों की पूजा करते हैं। तो रजोगुण में जो लोग होते हैं वो यक्ष राक्षसों को पूजा करते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उसके लिए क्या उदाहरण दे रहे हैं, दूसरे महायुद्ध में कलकत्ता में एक व्यापारी ने क्या किया था, बहुत सारा धन ब्लैक मार्केटिंग करके बहुत सारा धन अर्जित किया। वो तो किसके लिए हुआ, क्योंकि महायुद्ध चला, महायुद्ध तो हिटलर के कारण हुआ, इसलिए उसने हिटलर को पूजा किया, आपके कृपा के कारण हमें बहुत सारा धन संपत्ति इकट्ठा किया है, वो ऐसे उसने यक्ष राक्षसों का। वो हिटलर क्या है, वो यक्ष राक्षस है। तो उसको पूजा किया। और भूत प्रेतों का पूजा करते हैं तमोगुणी लोग, है ना, आपने देखा वो होगा चित्र में वगैरह, कपड़े रख के कुछ करते रहते हो, ऐसा कुछ है, क्या है
हड्डी
वो तमोगुण की पूजा है। श्रील प्रभुपाद उसके लिए भी उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे भारत में जो बहुत ही सुदूर, इसी प्रकार भारत में सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले हैं। हमने देखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं, और यदि उन्हें इसका पता चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है तो वे उस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। ये पूजा के विभिन्न प्रकार के वास्तव में ईश्वरी पूजा नहीं है। तो ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए है, तो ईश्वर की पूजा जो सत्वगुण में रहता है वो ईश्वर की पूजा करते हैं। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम यदीहते तत्र पुमान पावतः सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो ह्य अधोक्षजे मे नमसा विधीयते। तो कहते हैं कि ये जो श्लोक है, शिव जी ने क्या किया था, सती को बताया था सत्वम विशुद्धम। वो कहते हैं कि मैं हमेशा भगवान वासुदेव को शुद्ध कृष्ण भावना में नमस्कार करते रहता हूँ। ये कृष्ण भावना क्या है, ये शुद्ध भावना है जिसमें भगवान वासुदेव जो परम देवोत्तम पुरुष है वो हमें दर्शन करते हैं, दर्शन दर्शाते हैं। तो ऐसे शिव जी यहाँ पर विशेष करके जो शब्द सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्द, तो वो महत्वपूर्ण है कि शुद्ध सत्व में या शुद्ध चेतना में भगवान वासुदेव हमें दर्शन कराते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा विचार है, जब व्यक्ति सत्वगुण में होता है तो वह वसुदेव की पूजा करता है। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णतः शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त है वे ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर निर्विशेषवादियों का पंचोपासन का वर्णन कर रहे हैं। तो हालांकि जो निर्विशेषवादी है, मायावादी विशेष करते हैं, वो लोग सतोगुण में होना चाहिए वो लोग, फिर भी अपने असुरी बुद्धि के कारण वो लोग क्या करते हैं, वो पंच देवताओं को उपासना करते हैं। लेकिन हमने पहले चर्चा कर उनका भक्ति है और हम लोग जो शुद्ध सत्व में जो भक्ति होता है उसमें अंतर है। जो भगवान विष्णु शिव जी दुर्गा गणेश जी और सूर्य देव का वो पूजा करते हैं, ये पंचोपासना का कहा गया। तो वो लोग कैसे करते हैं, जब तक उनको ब्रह्म साक्षात्कार स्तर प्राप्त होता है तब तक उनका पूजा करते हैं, और उनमें बाद में उनको वो साक्षात्कार होने के बाद वो सोचते हैं कि मैं और वो जिनको मैं पूजा कर रहा था वो दोनों एक ही है, ऐसे वो लोग कहते हैं। ये पंचोपासक है, लेकिन वो सब असुरी। तो श्लोक क्रमांक 5, कहाँ गया, देवी देवताओं को पूजा, ऐसे भगवान बोल रहे हैं ना।
लिखा
है
लोग
देवता के पूजा करते हैं, पर
कॉमेंट्री में लिखा है लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करते हैं, मतलब वो किसको देवता मान रहे
हैं। तो यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन, रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके पुण्य खुश है। तो जैसे उन्होंने सृष्टि किया हिटलर को देखता था, ठीक है, हाँ ओके, साईं बाबा। श्लोक क्रमांक 5 और 6 दोनों साथ में हैं। अशास्त्रविहितं घोरं अप्यन्ते तपोजनाम्बाहङ्कारसंयुक्ताकामराकबलाभितर्षयन्तशरीरस्थं। जो लोग दम्ब तथा अहंकार से अभिभीत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहते हैं। तो भगवान अर्जुन का प्रश्न था कि श्रद्धावान है, पिछले अध्याय में क्योंकि वर्णन हुआ जो शास्त्र विधि को पालन नहीं करते हैं वो लोग असुर है, या उनके अंदर वो शास्त्र में श्रद्धा नहीं रहता है। लेकिन श्रद्धावान लोग होते हैं लेकिन वो भी शास्त्र का पालन नहीं करते हैं, तो उनके विभाजन यहाँ पर किया गया है। और पहले भगवान उन तीन प्रकार के लोगों के बारे में वर्णन करके, या तीन प्रकार के श्रद्धा का वर्णन करके, अभी असुरों के बारे में बता रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जो लोग दम्भ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या तथा व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा शरीर के भौतिक तत्वों तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, तो वे असुर कहते हैं, ऐसे क्या गया है। तो श्रील प्रभुपाद इसके लिए क्या बता रहे हैं, जो लोग ये कैसे राजनीतिक कारणों के लिए ऐसे तपस्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा ना गांधी ने किया था ताकि भारत को स्वतंत्र हो करके, अन्ना हजारे देश को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए कर रहा था, क्या हो गया, क्यों चुप हो गया, खत्म हो गया उसका। तो ऐसे ये बहुत इंटरनेशनल फिगर बन गए आप ऐसे करके लोग ऐसे करते हैं, लेकिन हाँ ये अच्छा नहीं है। इससे क्या हो जाता है, वो अपने शरीर को कष्ट देते हैं, और शरीर में जो भगवान, शरीर क्या है, ये बौद्धिक तत्वों से बना हुआ है, उसको कष्ट देना, शरीर में भगवान भी विद्यमान रहते हैं परमात्मा, उनको भी कष्ट करना है। तो प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं ऐसे करते करते कभी लोग मर भी जाते हैं। ऐसा कोई उदाहरण आपके पास जो ऐसे उपवास करते करते राजनीतिक कारणों के लिए उपवास करते करते मृत्यु हो गया?
नेपाल में अभी एक मर गए।
नेपाल में अभी मर गए,
उसका बेटा को सजा दिया था, उसका कोई काम नहीं मिला जैसे सजा दिया था, उसके उपवास कर तीन से कोई दिन में उसका बाप बहुत में घायल हो गया।
सरकार के सामने बैठा था वो, और भारत में तो बैठ बहुत सारे लोग हैं ना। हाँ तेलंगाना फ्रीडम और आंध्रप्रदेश, वो हो बिफोर आंध्रप्रदेश और कम यू मो वोट इन और यहाँ पर उनको क्या कहा गया है, ऐसे लोगों को अचेत सहर कहा गया है। तो अचेत शब्द का क्या अर्थ होता है, जिसका जिनका वो नॉर्मल नहीं रहते, एबनॉर्मल, अचेत सर वो नॉर्मल नहीं रहते, वो एबनॉर्मल जो चेत सर होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, सही मानसिक चेतना वाले होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, हमेशा शास्त्र विधि को पालन करना चाहिए। और प्रभुपाद यहाँ पर वह चेतावनी दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं तात्पर्य में कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए, क्यों हमें शास्त्र को पालन करना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए, शास्त्र को पालन नहीं करने से पिछले अध्याय में क्या बताया भगवान ने, तान अहम दिशता क्रूरान संसार नराधमान क्षिपाम अजस्य अशुभान आसुरिश्वे व योनिषु, और उसके बाद में भी मूढ़ जन्मणि जन्मणि अजस्रम अशुभान सदैव और जन्म जन्मांतर मूढ़ जन्मणि, उनको मैं ऐसे निम्न योनि में डाल देता हूँ ऐसे। इसलिए शास्त्र विधि को हमेशा पालन करना चाहिए, तो ये बुद्धिमान का लक्षण होता है। और अंत में प्रभुपाद एक इसके लिए क्या एक ऐसे असुरों को, जो असुर लोग हैं, अचेत लोग है, उनके लिए एक उपदेश भी देते हैं कि कैसे वो लोग भी ऊपर उठ सकते हैं। किंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुआ कि कोई गुरु उनके मार्गदर्शक करके उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके तो वे इस भाव बंधन से छूट कर अंतर्गत व परम गति को प्राप्त होते हैं। और श्लोक क्रमांक 7, आहार सात आहार आहारस्तु अपि सर्वस्य त्रिविदो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तताधानं केषां वेदमिमं शृणु। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन पसंद करता है, वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार होता है, तीन प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ तपस्या तथा ध्यान के लिए भी सत्य है। अब उनके वेदों के विषय में सुनो। तो हम जब तीन गुणों के बारे में चर्चा कर रहे थे, गुण क्या है, पूरा ब्रह्मांड में पूरा क्या बोलते हैं उसको, परवेडिंग व्याप्त है। जैसे इसका उदाहरण दिया, जैसे कपड़े में पूरा सब जगह दाग है, वैसे सब जगह वो व्याप्त है। तो ऐसे अन्न, तपस्या, दान, ये सब भाव में भी ये तीन गुणों का प्रभाव होता है। या तीन गुणों के लोग अलग अलग ऐसे प्रकार के अन्न, तपस्या, दान, यज्ञ के लिए आकर्षित होते हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि नहीं, उसके जाने से पहले हम लोग यहाँ पर भगवान इन सभी चीजों को इसलिए वर्णन कर रहे हैं ताकि हम लोग समझे कि कौन सा श्रेष्ठ है और हम लोग क्या करना चाहिए वो समझ सके। तो श्रील प्रभुपाद भगवद्गीता के भूमिका में वर्णन करते हैं कि वेद क्या है, मनुष्यों के लिए, या दूसरे शब्दों में वो भगवद्गीता मनुष्यों के लिए है। वेद शास्त्र और भगवद्गीता किस किन के लिए है, मनुष्यों के लिए, पशु के लिए नहीं है। यहाँ पर कोई कुत्ता बिल्ली आके जो हम लोग भगवद्गीता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो सुन नहीं रहे हैं, तो सभी लोग मनुष्य है ना। तो या दूसरे शब्दों में जो लोग इस चर्चा में भाग नहीं लेते वो मनुष्य क्या है, वो कुत्ते बिल्ली के समान है, पशु के समान है, क्योंकि वो मनुष्य जीवन को फायदा होता है। तो मनुष्य जीवन में क्या होता है, ऐसे पिछले श्लोक के तहत पिछले तर्पण में भी हम लोगों ने देखा, अचेत समतम, जिनका सही मानसिक चेतना होता है वो लोगों को शास्त्र विधि को पालन करना चाहिए। इसलिए जो मनुष्य जो है वो शास्त्र विधि को पालन करना चाहिए। और ये शास्त्र हमारे जीवन के मार्गदर्शिकाएं हैं, कैसे कर्म करने से क्या होता है ये सब चीज यहाँ पर बताया गया। तो इसलिए यहाँ पर कैसे किस प्रकार का अन्न करना चाहिए, किस प्रकार का यज्ञ करना चाहिए, किस प्रकार का दान देना चाहिए, किस प्रकार का तपस्या करना चाहिए, ये सब चीजों का इसमें वर्णन हुआ है। तो ऐसे इसको पालन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे अस्तित्व को शुद्ध कर सकते हैं और मानव जीवन को परिपूर्णता तक पहुंच जा सकते हैं। तो इसलिए इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, जो बुद्धिमान है और जो बुद्धिमान नहीं है उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पिछले श्लोक में वो आया था ना, अचेत शब्द आया था और उसको यहाँ पर विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। जो लोग यह समझ सकते हैं कि किस गुण में क्या करना, क्या क्या करना चाहिए, वे वास्तव में बुद्धिमान है। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक सा मानकर उसमें अंतर नहीं कर पाते वे अज्ञानी हैं। ऐसे भी प्रचारक लोग हैं जैसे विवेकानंद, विवेकहीन विवेकानंद, जो यह कहते हैं कि मनुष्य को मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के आदेश अनुसार कार्य नहीं करते। ये अपनी विधियां बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रांत करते रहते हैं, है ना। तो अपने मन में ढंग से कुछ भी करो, मांस खाओ, भगवद्गीता पढ़ने का क्या जरूरत है, फुटबॉल खेलो, ऐसे बोलते हैं, है ना। तुलसी का जल को, तुलसी महारानी को जल, तुलसी वृक्ष को जल अर्पण करने से अच्छा है बैंगन का जो है वृक्ष है उसको जल देना चाहिए, बैंगन तो मिलता है ऐसे, क्योंकि ये मूर्ख को पता नहीं है ना, शिक्षा महत्व होता है इन सब चीज़ों का, है ना। आप अल्प चेतसा है, सब कुछ ठीक है, वो भी ठीक है ऐसे। श्लोक क्रमांक 8, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन आहार सात्विक प्रिया। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला है, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल स्वास्थ्य सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय स्निग्ध स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। खट्वाम्लान खट्वाम्ला लवनाउ लवनात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहार राजस श्रेष्ठा दुःख शोक मया भला यात अत्यधिक तीक्ष्ण खट्टे नमकीन गरम चटपटे शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय होते हैं। ऐसा भोजन दुख शोक तथा रोग को उत्पन्न करने वाला है, शरीर के सभी रंध्रों से पानी आते होता है ना। माधवेंद्र जी यातयामं गतरसं भूति पर्याशितं चयत् उच्छिष्टम् अपि चामेद्य भोजनार्थं सप्रियम्। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वाद विहीन वियोजित एवं सड़ा झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। सो जो भोजन सात्विक व्यक्तियों के प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला है। आयु सत्व बलारोग्य जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल स्वास्थ्य सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है और उसका फल है ये। और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं? ऐसा भोजन रसमय होते हैं, बहुत ही रसमय होता है, स्निग्ध और स्वास्थ्यप्रद और हृदय को बाने वाले होते हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य में ये अन्न का क्या महत्व है हमारे जीवन में, उसका क्या उद्देश्य है उसको वर्णन करते हैं। का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना, ये उसका होता है। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है, आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना, ये अन्न का महत्व होता है। तो प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसे भोजन चुनते थे, वो सत्वगुण के दूध व्यंजन चीनी चावल गेहूं फल तथा तरकारियां तो अत्यंत प्रिय होते हैं। गुना मक्का गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तो वो भी सात्विक ही है। वैसे तो ऐसे ये सब सात्विक ही है या अन्य है। और शिल प्रपद यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि फैट स्निग्ध मतलब वो हमें पशु के जो फैट है एनिमल फैट वो खाना नहीं चाहिए। वो फैट कैसे आता है? दूध और दूध के अन्य अन्य जो पदार्थ होते हैं उससे वो प्राप्त हो जाता है, ऐसे कहते शिल प्रपद। उनको पशुओं की हत्या कर वो फैट प्राप्त करने के लिए पशुओं को हत्या करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभुपाद उसको कहते हैं पशुओं को हत्या करना क्या है, ये ब्रूट मेंटालिटी, ये का क्या बोलते हैं उसको, कैसा यू शुड लाउडली एंड क्लियरली गया या पाशविक मनोगति, ब्रूट मेंटेलिटी, बहुत ही बुरे लोग, क्रूर लोग हैं, है ना, क्रूर ही होते हैं। ऐसे लोग ही पशुओं को हत्या करते हैं। और बाद में वो कहते हैं इट्स अ वे ऑफ सब ह्यूमंस, ये जो नराधम लोग होते हैं, नरों में अधम लोग होते हैं, वो लोग ऐसे पशुओं को हत्या करके खाते हैं। ये अच्छा नहीं है। और उसके बाद जो रजोगुण में अन्न है उसको वर्णन कर रहा है, जो रजस भोजन कटु, बहुत लवणीय या अत्यधिक गर्म छरा परा होता है, वह अमाशय की श्लेष्म घटाकर रोग उत्पन्न करता है। अमाशय के श्लेष म्यूकस बहुत लवणीय है, अत्यधिक गर्म। यहाँ पर थोड़ा वो अनुवाद पर क्या लिख रहा है, इन अ मोड ऑफ पैशन विच इज विच आर बिटर, टू सॉल्टी आर टू हॉट आर ओवरली मिक्स्ड विथ रेड पेपर, ये सब वर्णन नहीं किया ना। ज्यादा ऐसे मिर्ची मिर्ची डालना क्या है, वो रजोगुण, इससे सभी रोग हो जाते हैं शरीर में। तो इस कारण में ज्यादा ज्यादा लोग प्रसाद का के महाप्रसाद का के बहुत सारा, कभी कभी भक्त लोग भी ऐसा प्रसाद बनाते हैं वो भगवान ही डाइजेस्ट कर पाते हैं, लेकिन वो डाइजेस्ट भगवान उसको स्वीकार नहीं। यहाँ पर तात्पर्य के अंत में बोल रहे हैं भगवान शास्त्र विधि के अनुसार, शास्त्र विधि के अनुसार जो भोग बनाते हैं भगवान, वही भगवान स्वीकार करते हैं। ऐसे मन नए ढंग से हम लोग बनाएंगे तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। वो इतना मिर्ची डाल दिया उसमें, है ना, और ज्यादा मिर्ची डालना, ज्यादा उसमें नमक डालना, है ना, तो आठवें श्लोक में जैसे बताया गया है वैसे होना चाहिए, तभी भगवान स्वीकार। विशेष करके भगवान क्या है, सत्वगुण में जो है उसको स्वीकार करते हैं। तो इसको ओवरली मिक्स विथ रेड पेपर जैसे कहते हैं। और उसके बाद तो ये रजोगुण के अन्न से क्या हो जाता है, बहुत सारे रोग हो जाते हैं। और उसके बाद फूड इन द मोड ऑफ डार्कनेस, तो तमोगुण में कैसे होता है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो तमोगुण में कैसे होता है, तो खाने के 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन वियोजित एवं सड़ा जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन, तो ये तामस। तो उसको ये सब खाना नहीं चाहिए, लेकिन प्रसाद 3 घंटे पहले पहले बता बनाया गया, लेकिन अच्छा है तो प्रसाद स्वीकार कर सकते। और जूठा सिर्फ भगवान का और जो आध्यात्मिक गुरु है उनको उनका स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसे वर्णन आता है ना, भक्त भक्त पद धूलि भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशिष्ट यही थी नमः, ऐसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है। भक्त के चरण धूलि, भक्त के जो चरण जल, उनको धोया हुआ जो चरण जल जल होता है, और उनका जो उच्छिष्ट, ये भक्ति में बहुत बल प्रदान करते हैं। तो वो आध्यात्मिक गुरु के ऐसे उच्छिष्ट लेना चाहिए। और उसके बाद श्रील प्रभुपाद यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि भगवान स्वीकार करते हैं पत्रम पुष्पम पदम तो यो में भक्त प्रयश, इसमें भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवान उस प्रसाद के रूप में वो छोड़ देते हैं, उसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन भगवान को शास्त्रों के अनुसार ही सब कुछ बना के बहुत ही प्रेम से भक्ति भावना से अर्पण करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 11। अपलाकांक्षी वीर्यज्ञो विदिष्टो य इच्छते यष्टव्यम् ये वेदि मनः समादाय स सात्विकः। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो यहाँ पर यज्ञ के बात बता रहे। हमने चौदहवें अध्याय में एक टेबल बनाया था ना, है ना, ऐसे पूरा अध्याय वो टेबल में करना चाहिए। ऐसे ये सत्रहवें अध्याय भी उसी में वो आगे बढ़ा सकते हैं उसको। अन्न, तीन गुणों में अन्न, तीन गुणों में यज्ञ, तीन गुणों में तपस्या, तीन गुणों में दान, ऐसे ये सब कुछ ऐसे बढ़ाते जाते हैं। चाहिए याद है आपको सब लोगों को, प्रयास कीजिए करने के लिए। और यहाँ पर 11वें श्लोक, 12वें श्लोक और 13वें श्लोक में तीन गुणों में यज्ञ कैसे होते हैं वो वर्णन करते हैं। तो पहले वो सत्वगुण में जो यज्ञ होता है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो सत्वगुण में यज्ञ कैसे होता है, यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो ऐसे होता है, प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं। कभी कभी लोग गिरजाघर या मंदिर किस लिए जाते हैं, वहाँ पर कुछ भौतिक चीज को प्राप्त करने के लिए जाते हैं, वो सत्वगुण में नहीं है। और अभी हम लोग उनको बता दिया कि आप क्या है भगवान के सामने इसलिए मत जाइए कि कुछ भौतिक चीज को प्राप्त करने के लिए, ऐसे ही कर्तव्य मानकर भगवान के सामने जाके दंडवत करना, फूल फल आदि उनको अर्पण करना, ऐसे करना चाहिए, ऐसे बोलेंगे तो लोग वो उसके लिए क्यों नहीं क्यों जाना चाहिए, क्योंकि उनको कोई ऊंचा उद्देश्य का पता नहीं रहता। कैसे हमारे चेतना को ऊपर उठाना चाहिए सत्व होना, उसके बाद शुद्ध सत्व में जाना चाहिए, उनको कोई ऊंचा उद्देश्य नहीं रहता। मंदिर जाने का अर्थ है कुछ भौतिक चीज को प्राप्त करना। तो इसलिए कर्तव्य मानकर जानना क्या है वो सत्वगुण में होता है। श्रील प्रभुपाद अंत में बताते हैं, प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदेश का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। तो नहीं तो क्या, सभ्य व्यक्ति को ऐसे शास्त्रों को पालन करते हैं सभ्य व्यक्ति, जो असभ्य होते हैं वो शास्त्रों को पालन नहीं करते। ठीक है। तो और श्लोक क्रमांक 12। अभिसंधायतु फलम दम्भार्थम अभिचयवयत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञ विद्धि राजसम्। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम रजसी जानो। अभिसंधाय तु फलम, फल की इच्छा से आकांक्षा से, दम्भार्थम अपि चैवयत्, घमंड के कारण करना, इसको कहते हैं। कभी कभी स्वर्ग लोग पहुंचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किए जाते हैं, ऐसे यज्ञ या अनुष्ठान राजसी माने जाते हैं। तो श्लोक क्रमांक 23। विधिहीनम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। तो क्या क्या लक्षण है, शास्त्रों के निर्देशों का अवहेलन करते हैं, प्रसाद विसरण नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में वो कहते हैं चातन हरेक कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण होना चाहिए। वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, श्रद्धा के बिना संपन्न किए जाने, ये तो बहुत सारे लक्षण बताते हैं तमोगुण में जो यज्ञ होते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य कह रहे हैं तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है, कोई वो श्रद्धा नहीं है, वो कुछ श्रद्धा नहीं होता। ठीक है, अंत में श्रद्धा तो होना ही है क्योंकि अस्तित्व का अंश है, लेकिन वास्तव में वो श्रद्धा नहीं है। तो कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं और फिर वो वेद इस धन को शास्त्र के निर्देश के अवहेलन करके मनोरंजन में ले करते हैं। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता, तो तामसी होते हैं, इनसे तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज के लिए कोई लाभ नहीं है। इसके लिए कोई उदाहरण? यज्ञ ऐसे कुछ वर्षिप या दुर्गा पूजा चलो ना, रात को इसलिए जोर से लगा रहे ना, कुछ कल रात को बहुत इसलिए नींद ही नहीं आया, इसलिए पूरा डाउन थे हम सुबह के क्लास में, इसलिए दोपहर का क्लास कैंसिल कर दिया। नहीं, कोई आजकल क्या है, कोई विधि के अनुसार नहीं कर रहे हैं ना, उसको विधि ही न हम यहाँ पर ऐसे बताया ना। जैसे गणेश पूजा करते हैं लोग, कैसे करते हैं उसको, सिर्फ दिखावा करने के लिए ना, सिर्फ विधि, कोई विधि को वो नहीं पालन करते हैं, कोई मंत्र नहीं, कोई दक्षिणा नहीं है, और जो भी उसके नाम पर जो धन इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ पर तात्पर्य में वो बता रहे हैं श्री प्रभुपाद, उसके नाम पर धन इकट्ठा कर रहे हैं, उसको किसके लिए उपयोग करते हैं वो लोग। और कभी कभी लोग ऐसे है, साल में दो बार, एक बार, दो बार, तीन बार, वो लोग कोई ऐसे तीर्थ स्थान जाते हैं क्योंकि उनको घर में रह के ऐसे जो गलत कार्य अशुचि व्रत है वो करने के लिए नहीं, अनुमति नहीं मिलता है ना, मांस भक्षण करना या ऐसे नशा करना, उसके लिए क्या करते हैं वो लोग छुट्टी लेकर तीर्थ स्थान के नाम पर या ऐसे धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर करते हैं। और तो अभी श्लोक क्रमांक 14, 16वें श्लोक में भगवान शरीर, वाणी और मन का तपस्या को बोलते हैं, और उसके बाद में 17, 18, 19, 20 में क्या करते हैं भगवान, नहीं 17, 18, 19 में वो तीन गुण में कैसे तपस्या होता है उनका वर्णन करता है। तो अभी शरीर की तपस्या क्या क्या होता है, देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम साचा शरीर पौजते। परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता, परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्र पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की शारीरिक तपस्या है। तो पहले क्या बता रहा है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम। सो देव मतलब भगवान भी है और देवता भी है, उनको क्या करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए। विजय जो ब्राह्मण होते हैं, प्राज्ञ, प्राज्ञ मतलब जो शास्त्र, जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान है, उनको हमेशा नमस्कार करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए। सो पूजनम शौच मार्जवम, और प्रभुपाद तात्पर्य में गुरु तथा माता पिता का भी जैसे गुरुजनों का वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्तियों का प्रणाम करें, है ना, प्रणाम करना चाहिए सबका। माता पिता का भी प्रणाम करना चाहिए, जब आप लोग मिलते हैं तो प्रणाम करना चाहिए। तो ऐसे ब्राह्मण जो वेद शास्त्रों में वरिष्ठ है उनको सब दंडवत करना चाहिए। देवताओं को भी, आप मंदिर की देवताओं के मंदिर के सामने से जा रहे हैं तो देवताओं को भी दंडवत करना चाहिए।
अलग अलग खाने की है देव देवता का प्रणाम
क्या हुआ? ठीक है। और शौचम स्वच्छता, उसके बारे में पहले चर्चा हुआ है, अंदरूनी और बाहरी स्वच्छता। और एक व्यक्ति अपने बर्ताव में बहुत आर्जवान सरल होना चाहिए, ऐसे कूटनीति नहीं होना चाहिए, कूटनीति का भावना नहीं होना चाहिए, और कम से कम जरूरतों से जीने के लिए सीखना चाहिए। आर्जवान ब्रह्मचर्यम अहिंसा आचार, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर ब्रह्मचर्य का गृहस्थों के संबंध में वर्णन करते हैं। तो गृहस्थ लोग सिर्फ विवाह के अंदर ही तो ये मैथुन जीवन करना चाहिए, तो बाहर नहीं, वो भी विवाह में कैसे, तो कृष्ण भावना भावित बच्चे को जन्म देने के लिए करना चाहिए। ऐसे पहले हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। तो ये सब शारीरिक तपस्या है, यहाँ पर अहिंसा भी है, हिंसा नहीं करना चाहिए। तो श्लोक क्रमांक 15, अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मया तपोच्यते। सच्चे भाने वाले हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो दूसरों को क्षुब्ध करने वाले क्या करना चाहिए, जो वाक्यों को नहीं बोलना चाहिए, एजिटेटिंग अदर्स, तो इसलिए वो बताया सुभाषित है ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। यहाँ पर वही चीज बता भगवान बता रहे, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चेत, सत्यम प्रिय हितम चेत। तो कभी कभी सत्य क्या होता है, वो कठोर होता है, इसलिए उसको बोलना नहीं चाहिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। तो लेकिन उसको पहले हम लोग पढ़ रहे थे ना 10वें अध्याय के 4वें या 5वें श्लोक के तात्पर्य में जब सत्यम का वर्णन आता है, वहां पर प्रभुपाद जी ने क्या बताया था, ये तो एक सामाजिक बात है, जब ये आध्यात्मिक सत्य बोलना है तो वो कठोर भी है तो भी उनको बोलना चाहिए, ऐसे बोलते ये जन सामान्य सामाजिक चीजों में जब चर्चा होता है वहां पर ये है, ठीक है। लेकिन जब आध्यात्मिक सत्य का बात आता है या कृष्ण भावनामृत का प्रचार आता है तो सत्य बोलना ही चाहिए, कठोर भी हो कुछ भी हो, उनको दूसरों को शुद्ध करने वाले भी हो फिर भी वो बोलना चाहिए। तो ऐसे प्रभुपाद जी वहां पर वर्णन करते हैं। ये वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त सत्य प्रिय हितम चेत, प्रिय जो शुद्ध न करने वाले वो वाक्य बोलना चाहिए। और सत्य का अर्थ है वेद शास्त्रों से, जो वेद शास्त्रों के सम्मत जो बातें हैं उसको ही बोलना सत्य कहते हैं। तो वेदों को छोड़कर, वेदों के जो शास्त्र, वेद शास्त्र जो है भगवद गीता गीता भागवत वगैरह, उनको छोड़कर कुछ और बोल दिया तो वह सत्य है। और यहाँ पर बता रहे श्रील प्रभुपाद, जब भी जो विद्वान लोगों के बीच में बातचीत होती है तो वो लोग क्या करते हैं, वेद शास्त्रों से उल्लेख करके चर्चा करते हैं। तो ये हमारे वाणी की तपस्या है, स्वाध्याय। इसलिए क्या करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद यहाँ पर उधर उपदेश दे रहे, हमें स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय मतलब और जब हम लोग दैवी गुणों का वर्णन कर रहे थे तब ब्रह्मचारी के लिए स्वाध्याय बताया गया ना, हमेशा वेदों के वेद शास्त्र है उसको अध्ययन करना, उसको स्वाध्याय कहते हैं। तो ये वाणी की तपस्या है। रूप गोस्वामी पहले श्लोक में उपदेशांत में उन्होंने क्या दिया उपदेश, वाचो वेग, पहले ये वाणी की जो वेग है उसको नियंत्रण करना चाहिए। तो उसका वेग कैसे नियंत्रण होता है, वो स्वाध्याय करने से और वही चीज बोलने से जो वेद शास्त्रों में बताया गया है। ऐसे कुछ भी हमें हमेशा कुछ बक बक करते नहीं रहना चाहिए, है ना। हम पहले चर्चा कर चुके ना कि ये जो मुंह है लकड़ी का बना होता तो क्या हो जाता था, अभी टूट गए ऐसा नहीं। तो इसलिए स्वाध्याय करने से हम जो भी बोलते हैं वो शास्त्र के, वो हमारा ऐसे चेतना बन जाता है, हम जो भी बोलेंगे वो सभी शास्त्र के आधार पर बोलेंगे, तो ऐसे चेतना है ना। ये सब पॉसिबल नहीं है ना MBBS पढ़ने से, है ना। तो ऐसे वाणी की तपस्या होता है। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्मा विनिग्रह भाव संशुद्धि इत्येतत् तपो मानस मुच्यते तथा संतोष सरलता गंभीरता आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तो मन की तपस्याएं संतोष संतुष्टि मन प्रसाद, मन की तुष्टि, ये मन का तपस्या है। जब मन इंद्र तृप्ति के ऊपर हमेशा केंद्रित रहता है तो वह कभी संतुष्ट नहीं होता। आप जितना भी इंद्र तृप्ति कर रहे हैं उसको इंद्र तृप्ति दीजिए, कभी संतुष्ट नहीं होता। तो इसलिए मन प्रसाद, मन को तुष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, हम लोगों को उसको इंद्र तृप्ति के विषयों से दूर लेकर जाना चाहिए, तभी मन शांत हो जाएगा। तो पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं ना दूसरे अध्याय में, जब इंद्र तृप्ति के विषय वासना जो मन में रहते हैं तो मन अशांत हो जाता है। अशांत है तो अशांतस्य मन कुतसुख, अशांतस्य कुतसुखम भगवान बोलते हैं। जो अशांत व्यक्ति को कैसे सुख प्राप्त होता, वो संतुष्टि कभी प्राप्त नहीं होता। तो भौतिक इच्छा होने के कारण मन अशांत हो जाता है, विचलित, हमेशा चिंता में लग जाता है। आशा ये पिछले अध्याय में ना चिंता अपरिमेय, बहुत असंख्य चिंता, प्रलयंतम उपाश्रित्य, अंतिम क्षण तक ऐसे इंद्र लोक की असुर के लक्षण होते हैं। तो मन को हमें क्या कर लेना चाहिए, तो वो ऐसे इंद्र तृप्ति के विषयों से दूर लेके जाना चाहिए, तभी वो शांत हो जाएगा। कभी कभी हम लोग सोचते हैं वो मन इतना तकलीफ देता है, चलो हम उसको संतुष्ट करेंगे, ऐसे करके वो करते हैं, लेकिन वो सभी संतुष्ट नहीं होता है ना। इधर उधर हम लोग कृष्ण भक्ति को छोड़कर, क्योंकि वो इतना मन इंद्र तृप्ति के ऊपर है ना है, हम लोग कृष्ण भावना को छोड़कर कुछ और चीज़ों में आनंद लेने के लिए कोशिश करते हैं, तो लेकिन उससे वो कभी संतुष्ट नहीं होता। उसको क्या कर देना चाहिए, वो इंद्र तृप्ति की इच्छा से दूर लेके जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में उपदेश दे रहे हैं कि हमें उसको क्या करना चाहिए, मन को पुराण तथा महाभारत में जो बहुत ही मन को बांधने वाले जो कथाएं हैं, तो उनको सुनने में या उनको अध्ययन करने में, उनके ऊपर ध्यान करने में लगा देना चाहिए, तब इंद्र तृप्ति की इच्छा से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। और और उसके बाद में क्या बोल रहा है, सम्यक्तम मौनम मौनम। सो सौम्यत्वम सरलता इसके पीछे भी आया था, पहले भी आया था। अन्यों के प्रति कपट भाव नहीं रहना और मौनम, तो मौन कैसे होता है, गंभीरता। तो श्रील प्रभुपाद तो वो तत्पर में वर्णन कर रहे हैं, मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचते रहे, सोचता रहे। जब हम लोग आत्म साक्षात्कार के विषय पर हमेशा सोचते रहते हैं तो क्या होता है, मन नियंत्रित हो जाता है या वो बहुत ही गंभीर हो जाता है। कृष्ण भावना वाला एक व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारणा किए रहता है। मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से प्रबद्ध करना। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। तो श्लोक क्रमांक 17, श्रद्धया परया तप्तम तपस्त्रिविदा नर त्रिविदम नर अपलाकांक्षिभिः सात्विकं परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर के परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो यहाँ पर भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार के तपस्या सात्विक, यहाँ पर तीन चीजों को बता रहे हैं। तो परमेश्वर में प्रवृत्त होना चाहिए और इच्छा नहीं करना चाहिए भौतिक लाभ की इच्छा, और श्रद्धा से संपन्न होना चाहिए। तो श्लोक क्रमांक 18, श्लोक क्रमांक सत्कारवान पूजार्थम तपोधम्बेन चैवयत् क्रियते तद्विह प्रोक्तं राजसंचलम अद्भुवम्। जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा करने के लिए संपन्न की जाती है वही वह राजसी कहलाती है, या न तो स्थायी होती न शाश्वत। दम्भ पूर्वक गर्व से तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा करने कराने के लिए ये राजसी है और इसका अस्थायी वो ज्यादा समय तक नहीं रहता है, है ना। प्रभुपाद तात्पर्य में वो अन्य लोगों को आकर्षित हो ऐसे उसके लिए तपस्या करते हैं ताकि उनको सत्कार सम्मान पूजा मिल सके। तो उसके लिए तपस्या नहीं करना चाहिए। सो रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों की पूजा करवाते है और उनसे चरण दिलवाकर धन चढ़वाते हैं। तो देखिए ऐसे करते हैं ना, बहुत होता है ना ऐसे। बाद में क्योंकि वो अस्थाई रहता है उनकी तपस्या, लोग पहले उनकी तपस्या को देखकर आकर्षित हो सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा समय तक नहीं रहता है, फिर उनका पर्दाफाश हो जाता है ना। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं, ये कुछ समय तक रहते हैं, ये कभी स्थायी नहीं होते। तो श्लोक क्रमांक 19, मूढग्राहेनात्मानो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्कामसम्बुदार्थम्। मूर्खतावश आत्मा उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। तो जैसे हिरण्यकशिपु या रावण, ऐसे लोग क्या किया, बहुत तपस्या किया उन लोग ने। वो असुर लोग भी तपस्या करते हैं, लेकिन उनका तपस्या क्या होता है, दूसरों को तकलीफ देने वाला। तो पहले क्रियंते उग्र कर्माणो क्षयाय जगतो हितः, असुरों का लक्षण क्या होता है, ऐसे उग्र कर्म करते हैं जो दूसरों के लिए अहित होता है और विनाशकारी होता है। तो ये तो हिरण्यकशिपु का प्रपद उदाहरण दे रहे। उसने ब्रह्मा से ऐसी वस्तुएं मांगी थी, लेकिन अंत में भगवान द्वारा मारा गया। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चित ही तामसी तपस्या है। असंभव चीज को प्राप्त करने के लिए भी तपस्या करना क्या है, वो तामसी है। तो श्लोक क्रमांक 20, यहाँ पर, यहाँ से तीन श्लोक में सत्व रज तमोगुण में कैसे दान होता है उसके बारे में भगवान बता रहे। दातव्यम् इति यद्धानं दीयते नोपकारिणे देशकाले च पात्रे च तद्धानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिए जाता है वह सात्विक माना जाता है। तो कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में, अभी हम लोग बहुत सारे हैं, बहुत बार यहाँ पर है ना सत्वगुण में पूजा यज्ञ तपस्या और यहाँ पर दान का भी हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये लक्षण जब लिखते हैं तो भौतिक जगत में ये करना, ये पालन करना कितना मुश्किल है ना, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर भौतिक बहुत सारे इच्छाएँ होते हैं। यहाँ पर बताया गया कोई इच्छा के हेतु के बिना ऐसे वर्णन कर वर्णन आता है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, शास्त्र को पालन करने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ही तीव्र होना चाहिए। तो तभी ये, या दूसरे शब्दों में जब हम लोग सत्वगुण में स्थित हो जाते हैं तो तभी ऐसे भावना आ सकता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दान मतलब जो ब्राह्मणों को और वैष्णवों को देना चाहिए, कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगे रहते हैं उनको ये दान देना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं कभी कभी क्या है, जो गरीब है उनको ही दयावश दान दिया जाता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं उनको दे सकते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उसको क्या कहते हैं, लेकिन वो सही चीज के लिए उसका उपयोग नहीं होता है तो क्या हो जाता है, इस दान से हम लोग कोई प्रगति नहीं करते। या दूसरे शब्दों में क्या हो जाता है, हमें उसका कर्म लेना पड़ता है। तो आजकल तो लोग भीख मांगते हैं और कुछ भी करते हैं उसके साथ वो धन को। कभी कभी हम लोग प्रसाद देने जाते हैं तभी वो लोग क्या करते हैं, प्रसाद नहीं चाहिए उनको, पैसा चाहिए चाय पीने के लिए, चाय पीने के लिए पैसा चाहिए। कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं चाय पीने के लिए दान दे दो, ऐसे चाय पीने के लिए दान दे दो ऐसे बोलते हैं। और श्लोक क्रमांक 21, यत्तु प्रत्युपकारार्थम्, हरे कृष्ण, यत्तु प्रत्युपकारार्थम् फलम् उद्दिश्य वा पुनः क्रियते परिप्रेक्षितं तद्धानं राजसंस्कृतं। तो ये देखे किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। यहाँ पर तीन उसके लक्षण बता रहे हैं, रजोगुण के दान का तीन लक्षण बता रहे हैं भगवान कि क्या है। वो प्रत्युपकार की भावना रहता है और कर्मफल की या कर्मफल की इच्छा से, दोनों एक ही है। अनिच्छा पूर्वक है ना, परिक्लिष्टम, परिक्लिष्टम मतलब इच्छा नहीं होते देने के लिए, बहुत ही भारी हृदय से वो देता है वो, ना है ना, देऊं क्या नहीं देऊं ऐसे। ये राजसी दान है। प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है तो कभी अत्यंत कष्ट से तथा कभी इस पश्चाताप के साथ, मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। बाद में भी ऐसे शोक नहीं करना चाहिए। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। कभी कभी घर में जो बुजुर्ग होते हैं या उनके दबाव से, उनका इच्छा नहीं होता है लेकिन दबाव से वो दान देते हैं। ऐसे दान रजोगुण, ऐसे अनेक दातव्य न्यास है जो इन संस्थाओं को दान देते हैं जहाँ इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र से दान की संस्तुति नहीं करते, केवल सात्विक दान की संस्तुति की गई है। सो उसके बाद श्लोक क्रमांक 22। अदेश काले अध्यानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आधार से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। अब अपवित्र स्थान में अनुचित समय पर अयोग्य व्यक्ति को बिना समुचित ध्यान के तथा आधार से, बिना समुचित ध्यान तथा आधार मतलब शास्त्र के विरुद्ध, वह तामसी। यहाँ पर मद्यपान द्रुत क्रीड़ा की दशमी के लिए दान देना को प्रोत्साहन नहीं दिया, ऐसे दान तामसी है, ऐसे दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुष के प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी है। तो उसके बाद अभी 23वें श्लोक से लेकर अंत तक भगवान दिव्य श्रद्धा क्या होती है या ये सभी कार्य यज्ञ दान तप दान वगैरह सब कुछ दिव्य कैसे किया जा, दिव्य भावना में कैसे की जाती है उसको वर्णन करते हैं। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविदास्मतः रामणस्तेन वेदाश्च यज्ञश्च विहिता पुरा। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियाँ ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ के समय प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर देखिए वो सिर्फ ब्राह्मणों को ये वेदों को पालन करते ही ये विचार नहीं करते हैं और भगवान को संतुष्ट करने के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं ये सिर्फ कर्तव्य भी नहीं है। सतोगुण में क्या होता है, यज्ञ कर्तव्य मानकर वो करते हैं लेकिन ये लोग भगवान को संतुष्ट करने के लिए करते हैं, तब ये इन चीजों का उच्चारण किया जाता है। जब इनको उच्चारण करते हैं तो वो भगवान के लिए अर्पित हो जाता है। तो वो तत्सत को उल्लेख करना चाहिए। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि ये सृष्टि से आरंभ, क्योंकि ये ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी को ये बताया गया और ब्रह्मा जी ने इनको इसको फिर क्या किए, अपने पुत्रों और शिष्यों को दिया उन्होंने। ऐसे परंपरा में आते चलते आ रहा आया है। तो परम ब्रह्म को प्रसन्न करने के लिए ओम तत्सत को उच्चारण करके तो ऐसे यज्ञ किया जाता है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कुछ वो कहते हैं कि ओम तत्सत का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरण ओम तद विष्णु हो, तो वो ऋग्वेद से है, वो अगले श्लोक में आएगा। और अन्य श्लोकों को ओम तत् सत इन तीनों के लिए एक 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 उदाहरण दे रहे हैं कैसे उसका उच्चारण किया जाता है। श्रील प्रभुपाद इस सूत्र में हरे के लिए वो एक एक उदाहरण दे रहे हैं। तो ऋग्वेद से कहते हैं ओम इत्येतद् ब्रह्मणो निर्दिष्टम नाम। तो ये पहला लक्ष्य को इंगित करता है। देन तत्वमसि इंडिकेट्स सेकेंड गोल। और तीसरा है वो छांदोग्य उपनिषद से है। और सदैव सौम्य वो भी छांदोग्य उपनिषद से है। तो ये तीसरा आप देखिए, पहले में ओम शब्द आया, दूसरा में तत्व तत् शब्द आया, तीसरा में क्या हो गया सद आया। वो तीनों मिलकर ओम तत्स बन गए। तो ऐसे ये परंपरा में चलते आ रहे थे। अंत में श्रील प्रभुपाद बता रहे भगवद्गीता में क्या बताया गया है, सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना चाहिए। अतः भगवद्गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्स के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण बाणामृत के कार्य करता है। कृष्ण बाणामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है जिससे मनुष्य भगवत धाम वापिस जा सके। ऐसे दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीज आरंभ करने से पहले और जब हम कोई अंत करते हैं तो जो भी कार्य हम लोग करते हैं, कोई प्रवचन देते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, पहले हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। उसमें ये सब ओम का शब्द आ जाता है, ओम शब्द पहले हम लोग चर्चा किए ना, तो ऐसे हम लोग करते हैं। तो अभी श्लोक क्रमांक 24, अभी एक एक करके ओम तत् और सत तीनों को और विस्तार से भगवान वर्णन करते हैं। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तप क्रिया प्रवर्ते विदानोक्तानुसृतं ब्रह्मवादिना। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। सभी क्या है, ओम से वो लोग करते हैं। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद उल्लेख कर रहे हैं ओम तद विष्णु परमं पदं पश्यन्ति सूरयः। विष्णु के चरण कमल पर भक्ति के आश्रय है, भगवान के लिए संपन्न हरेक क्रियाएं सारे कार्यक्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। तो एस्टैब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव, जब भी कोई कार्य किया जा आरंभ किया जाता है तो पहले उसका लक्ष्य क्या है उसको स्थापित किया जाता है। तो अभी यज्ञ दान तप कर रहे उसका लक्ष्य क्या है उसको स्थापित करने के लिए हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं। तो वो मतलब वो परब्रह्म को या भगवान कृष्ण को इंगित करता है। तो श्लोक क्रमांक 25, अनभिसन्धाया फलं यज्ञातपक्रियाः दानक्रियाश्च विहिताः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मनुष्य को चाहिए कि कर्म के फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा ध्यान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य गौ बंधन से मुक्त होना। सो यहाँ पर तत् शब्द का उपयोग किया गया है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर भगवान कि कर्म फल के इच्छा के बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा ध्यान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भाव बंधन से मुक्त होना है। तो क्या हो जाता है वो हम लोग तत् को उच्चारण करेंगे तो वो क्रियाएं भाव बंधन से हमें मुक्त करने के लिए मुक्त करते हैं। आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म न करे। सारे कार्य भगवान के परम धाम वापिस जाने के लिए के उद्देश्य से किए जाए जो चरम उपलब्धि है। तो अभी देखिए ओम क्या है वो आरंभ होता है और यहाँ परम लक्ष्य की उपलब्धि के लिए बताया गया। तो दूसरे शब्दों में और तो बाद में हम चर्चा करें सत सत शब्द को चर्चा करें। श्लोक क्रमांक 26 और 27 सद्भावे साधुभावे च सद्विद्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्द पादयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सद्विति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सद्विद्येवापि निर्धार्यते। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। ये प्रतापुत्र ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा ध्यान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष के प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत है। तो यहाँ पर सत इन दोनों श्लोकों में सत शब्द का वर्णन कर रहे हैं। तो जो यज्ञ भक्तिमय लक्ष्य होता है तो उसको सत शब्द से अभिभूत किया जाता है। यह यज्ञ संपन्न करता भी सत कहलाते हैं। क्रिय संपन्न किया यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उसको प्रशस्ते कर्मणि अर्थात नियत कर्तव्य सूचित करते हैं कि यहाँ पर इस श्लोक में प्रशस्ते कर्मणि आता है शब्द वो पहले 26वें श्लोक में आता है। वैदिक साहित्य में ऐसे कई क्रियाएं निर्धारित है जो गर्भधान से लेकर मृत्यु तक संसार संस्कार के रूप में है। ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसे सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्तुति की गई है। विशेष करके यहाँ पर सत शब्द को उच्चारण करना ऐसी सारी सद्भाव तथा साधुभाव सद्भावे साधुभावे च तो यहाँ पर सत 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 आता है ना सदिति चोच्यते सदिदित्ते बार बार इन श्लोकों में सत सत आता है ना। तो साधु भाव आध्यात्मिक स्थिति का सूचक है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत है और जो व्यक्ति आध्यात्मिक स्थिति के आध्यात्मिक स्थिति के सूचक है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत है, और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत कार्यों के प्रति सचेष्ट रहता है वह साधु कहलाता है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंति रत्कर्ण रसायन कथा तजोशनाद्य दप वर्ग वर्तमनी श्रद्धारतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यते। जो सत साधु पुरुष होते हैं साधु भावे, तो उनके संग में हम लोग भगवान की वीर्य गाथा सुनेंगे तो हम अपवर्ग की ओर जाएंगे। अपवर्ग मतलब ये भौतिक जगत क्या है, अवर्ग है, प प ब मा, यहाँ पर परिश्रम है और फेना मुंह में जागा आता है परिश्रम करने से, और ब मतलब यहाँ पर बंधन होता है कर्म बंधन, वो कर्म का बंधन होता है, भय इसके कारण भय भी होता है, और अंत में मृत्यु, ये भौतिक जगत का वर्णन है। अपवर्ग वर्तमानी मतलब जो अपवर्ग की ओर जाते हैं, जहाँ पर ये सभी नहीं है, अपवर्गमा नहीं है, मतलब वैकुंठ भगवान के दाम। तो और कैसे होता है, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, क्रम से श्रद्धा भक्ति, श्रद्धा रति और भक्ति का जागृत होने से ऐसे होता है। तो ये उनका महत्व होता है, साधु सद्भाव साधु वाले छ। सताम प्रसंगान बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्धि नहीं हो पाता, किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत धारण करते समय ओम तत् शब्द का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत् सत् या ब्रह्म की चरम लक्ष्य होती है। तदर्थीयम शब्द ब्रह्म के प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा करने का सूचक है। तो आप देखिए यहाँ पर हर एक अलग अलग शब्द का जो इन श्लोकों में आए हैं उसको प्रॉपर उच्चारण करा। तदर्थीयम ये ना 27वें श्लोक के अंत में आता है, भगवान के मंदिर के मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करना जैसी सेवाएं या भगवान के यश का प्रसार करने वाला अन्य कोई सेवा में कार्य सम्मिलित है। तदर्थम कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, भगवान कृष्ण के प्रसन्नता के लिए सभी कार्य करना चाहिए, उसको ये सभी कार्य है। इस तरह ओम तत्सत शब्द समस्त कार्यों के पूरा करने के लिए कोई कई प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं। तो श्लोक क्रमांक 28, अशब्दया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असद्धित्युच्यते पाता न च तत्प्रेत्ये नो इह। हे पात, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है, और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यक्त जाता है। तो विशेष करके यहाँ पर श्रद्धा का अर्थ होता है जब भगवान को अर्पित किए हुए और शास्त्रों को पालन करते हुए वो श्रद्धा को, और उसके बिना क्या हो जाता है, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। अतः इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य कुत्सित है, प्रत्येक कार्य कृष्ण मानवत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। ऐसे श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। समस्त वैदिक आदेशों को के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यह है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। इस प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। अतः सत्रवा सप्तदशोध्याय ओम सत्सत्। और कुछ कहना है, कमेंट्स बोलना है? यहाँ पर बहुत सारा चीज है ना, सिर्फ वही लक्षण नहीं, अन्य भी लक्षण बताए गए हैं ना, लेकिन ऐसे यहाँ पर बहुत सारे अन्य लक्षण भी बताए गए हैं शास्त्र के अनुसार है। उसके साथ साथ दम्भ दर्प, तो दम्भ गर्व, गर्व दिखाने के लिए, दूसरों को आकर्षित करने के लिए, ये सब चीज़ों का भी बताया ना, तो वो नहीं तो क्या हो जाता है, वो व्यर्थ है, बस वो वही तो व्यर्थ हो जाता है। वो भी सेम होम में हो सकता है, उनमें भी या स्क्रिप्चर फॉलो करना एक चीज है, लेकिन उसमें भी और गुण होते हैं ना, किसके लिए, सिर्फ क्या वो कर्तव्य भावना से कर रहे हो, या सिर्फ दूसरों को दिखाना गर्व से कर रहे हो, उसके आधार पर भी उनको तीन गुणों में विभाजित कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? सभी पशु क्या है तमोगुण में होते हैं, और तमोगुण में और भी पशुओं में भी विभाजन होता है, सत्व रज तमो में। जो गाय है उसको सत्वगुण में माना गया है, जो शेर वगैरह है वो रजोगुण में रहते हैं, और जो गधा या ऐसे कुछ जो पशु है वो तमोगुण में रहते हैं, तमोगुण के लक्षण। तो ऐसे ही उनको भी ऐसे जनरली वो सभी जो धर्म है वो तामसिक धर्म है ना,
तामसिक धर्म के प्रकार
जैसे हम लोग बोलते हैं ना, छह पुराण जो तमस्विक है, क्योंकि उसमें ऐसे चीज ज्यादा वर्णन किया जाता है, जैसे यक्ष राक्षस तो रजोगुण वाले हैं, भूत प्रेतों का ज्यादा आप वो मुसलमान लोग बहुत तंत्र मंत्र का तंत्र में लगे रहते हैं, इसलिए ना कभी कभी बहुत सारे लोग जिनको भूत प्रेत चढ़ गया होता है वो ऐसे मुसलमान उनके पास जाते हैं। उनमें भी सच हो सकता है, लेकिन कभी हमेशा इस भौतिक जगत में, जैसे इस तात्पर्य में श्रद्धा मयो यम पुरुष सत्वानुरूपो, उसमें चर्चा कर रहे थे, कभी भी सत्वगुण भी कभी शुद्ध नहीं रहता रजस्तम। वैसे देखेंगे तो श्रद्धा मतलब क्या है, वो सत्वगुण में होना चाहिए, क्योंकि सत्वानुरूप ऐसे भगवान कहते हैं, सत्व से वो उसका जागृत होता है, लेकिन क्योंकि कभी सत्व अगुण शुद्ध रूप में नहीं रहता है, इसके कारण रजतम का भी उसमें मिश्रण रहता है। ऐसा कोई कुछ कुछ चीज़ उनके जीवन में या उनकी भावना में ऐसे कुछ अंश हो सकते हैं जो सात्विक हो और रजस तमस का भी मिश्रण होता है, ठीक है। अंत में इसलिए इसको क्या करना चाहिए, वो श्लोक हम लोगों ने चौथे स्कंद से शिव जी जो बताए ना, वो स्तर तक जब तक आते नहीं वो तब तक ये मिश्रण रहेगा।
एग्जाम
नहीं या वही हमने हम वही बता रहे हैं।
और दूसरा दो चीज़ें हमने बताया ध्यान के बारे में कि ध्यान ध्यान के बारे में जो जरूरतमंद है उसको ध्यान देना चाहिए था, जो जरूरतमंद है उसको ध्यान देना चाहिए था।
कौन किसको
जो चाहिए
जरूरत
मगर हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी बोलते पवन देवता जो मुझे बताया उन्हें ध्यान क्यों भ्रमण को लेना चाहिए।
हाँ वो मैं भूल गया वहाँ पर वो, क्योंकि उन्होंने ओम तत्सत का क्या किया था, उन्होंने उच्चारण किया था इसलिए बलि महाराज को दिया।
ब्राह्मण को ध्यान देना चाहिए ऐसा, मगर जो वो कैसे प्रोफेशन बनाता है जैसे मार्केट के अंदर खाना ये तो वो जी बोले ऐसा उनको मार देना चाहिए, इसलिए वो मार देना चाहिए क्योंकि तो धंधा करते हैं खाली ध्यान देने का, तो वो क्या करना चाहिए
दान देने का या लेने वाला
लेने वाले देखो
क्या, इसलिए जब क्षत्रिय राजा को बनाएंगे वो करेंगे है ना, अभी तो हम लोग नहीं कर सकते जो बहुत सारे प्रभुपाद जी जो उपदेश देते हैं वो सभी लोग उसको लागू नहीं होता है, सभी लोग उसको सभी लोग करना नहीं होता है। प्रभुपाद जी ऐसे वो उपदेश दिया है तो इसलिए राजा है, हम जब क्षत्रिय राजा बनाएंगे वो लोग करेंगे वो काम है ना, तो उनका काम है हमारा काम नहीं है। वो तमोगुण में आता है ना, अपात्र यहाँ पर बताया गया ना, जो पात्र को देखे बिना तो तमोगुण में आ
जाता है।
तो ऐसे मन बोलने ढंग से होता नहीं है, वो ठीक है भगवान को समर्पित किया आपने लेकिन उसके साथ साथ शास्त्र विधि को भी पालन करना होता है। शास्त्र विधि को जो पालन नहीं करता है वो क्या है, तो वो बहुत उनका कैटेगरी वो सब भी नहीं है। यहाँ पर थप्पर में हम लोग देते हैं ना सब भी नहीं है। और कुछ उन्होंने उच्चारण किया था ओम करके, इसलिए उनको वो अलग अलग कारण बताते हैं ना क्यों मुझे ये दान देना ही चाहिए, हालांकि शुक्राचार्य उनको नहीं बोल रहे थे, इसके लिए उन्होंने बहुत सारा कारण दिए थे, ये कारण था वो ओम का उच्चारण किया था। आचमन भी किया था उन्होंने बलि महाराज ने, क्योंकि आपके साथ आपको शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा है ना। यहाँ पर उदाहरण दिया ना, कोई कोई ऐसे ये उपवास करते 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 क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, और आपके साथ भगवान को भी बाध्य कर रहे हैं आप जाने के लिए, तो इसलिए उनको तकलीफ होता है। बहुत सारा पाप है, और पाप है ऐसा। एक और चीज बोलना भूल गया मैं, बोलने था मन में था वो अच्छा लगा। ठीक है और कुछ है?
तो देवी देवता के प्रणाम करने की कोई विधि है?
हाँ, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो पांच श्लोक है ना जो देवी देवताओं को गुणगान करते हैं और कहते हैं कि वो भगवान से नम संहिता में है ना, जैसे शिव जी के मंदिर में गए आप किस कौन सा श्लोक उच्चारण करना चाहिए नम संहिता से, क्षीरम यथा नदी विकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा पृथगस्थि हेतु यशम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंद मानि पुरुष। और दुर्गा जी के मंदिर में गए तो क्या, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शब्द एवं चाएवयस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमप्यस्ति शिष्टते से गोविंदमादिपुरुषं तमां भजामि। और आप गणेश जी की विनिदाय बुम्बा द्वंदे प्रमाण समय समर्थ विज्ञान निहंगमयमस्ति गोविंद पुरुषम तमाम भजामि। और सूर्य देव के मंदिर में गए जाएंगे तो कोणार्क जाएंगे तो चक्षुरेश सविता सकल राजा समस्त स्वर्ण विशेष तेज सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा ये ग्रंथ है ना इसमें है देखिए सभी है।
मैंने सुना था देवी देवता को भगवान के जैसे प्रणाम करना नहीं चाहिए जस्ट ऑपोजिट करना चाहिए ऐसे सुना था।
और उसके बारे में चाहे मुझे भी बताइए बाद में विस्तार से
नहीं मुझे
क्योंकि मैं कभी गया नहीं है इसलिए मुझे उसका चिंता नहीं हुआ कैसे धन्य
मंदिरों में ऐसा
है ऐसे लोगों को भी मंदिर की ओर आकर्षित करने के लिए
घर के बाहर भी रखते हैं
ऐसे लोगों को ले भी आकर्षित करने के लिए मंदिर की ओर वो नहीं है अश्लील अश्लील चित्र रहते हैं ना कार्विंग्स मंदिरों के तो मेरा समझ के अनुसार जो लोग ऐसे चीजों में रुचि रखते हैं वो लोग भी मंदिर की ओर आकर्षित हो जाएंगे उसके शूद्र लोग वगैरह
था वो इस मंदिर में आकर ऐसा भाव ये देखने से भी ये भाव नहीं जागने चाहिए ऐसा
वो भी कहते हैं कुछ लोग वो भी सुझाव है ये सब सुझाव जैसे दूसरे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोले तमोगुण में जो श्रद्धा वो श्रद्धा नहीं है वो वास्तविक श्रद्धा कैसे होता है सतोगुण में ही रहता है मतलब सबको खाने के लिए आदत हो गया ना सबको खाने के लिए महाराज जी ने हमको गुरुकुल में बताया चिल्ली नहीं करते तो अच्छा गुरुकुल मतलब ब्रह्मचारी आश्रम में वैसे ही होना
चाहिए ब्लैक पेपर यूज कर सकते हैं ना उसके
बहुत सारे उसके लिए
अदरक
है
प्रीचिंग
प्रीचिंग का अर्थ क्या होता है लोगों को हमारे जैसे बनाना ही प्रीचिंग का उद्देश्य है सतोगुण में जो होता है वो टेस्टी होता है जैसे भगवान ने किया सतोगुण मतलब टेस्टी हमने बहुत सारे लोगों को देखा है हम बहुत ही सरल चीज खिचड़ी भी देंगे तो वो इतना अच्छा लगता है उनको इस्कॉन का प्रसाद होता है लोग खिचड़ी भी दीजिए प्रसाद मतलब वो अच्छा ऐसे नियमित शास्त्र के अनुसार हमें मनाना चाहिए तो आप मुंह भर सभी मसाले वगैरह डाल सकते हैं मुंह भर मसाले हो सकते हैं टेस्टी कर सकते हैं उसको जरूरी नहीं कि ऐसे जो जरूरी नहीं कि आपको ऐसे जो जो रोगी क्या बोलते हैं रोगी का जो अन्न है ऐसे नहीं होना चाहिए, जो मरीज का अन्न होता है ना वैसे अन्न का हम लोग बता प्रसाद नहीं, प्रसाद मतलब टेस्टी, सत्वगुण मतलब टेस्टी, यहाँ पर सत्व बला आरोग्य वो वर्णन हुआ ना, उसके लिए चिल्ली डाल के चिल्ली और लोग सोचते हैं चिल्ली और तेल ज़्यादा डाला तो वो टेस्टी हो जाता है, सब तेल तैरता रहता है क्या है वो सिर्फ झूठ बोलना नहीं चाहिए है। एक बार हमारे कमल कृष्ण महाराज थे ना वो वहाँ पर गए थे फिजी, फिजी में वहाँ पर प्रभुपाद जी ने वो कालिया कृष्ण को उन्होंने स्थापना किया प्रभुपाद जी ने, वहाँ पर वो जब प्रसाद लिए वो क्या था ये करेला था, वो करेला स्वीट लग रहा था, भक्तों को पूछा तो भगवान छोटे हैं यहाँ पर छोटे बालक उनको करेला अच्छा नहीं लग रहा है सर नहीं है नीम मतलब उसको भी ऐसे नीम मतलब ज़्यादा ऐसे कटा नहीं होना चाहिए, बिटर नहीं होना चाहिए, थोड़ा उसको टेस्ट चेंज कर दे ना जनरल और करेला भी उतना खट्टा नहीं होता जब आप उसको फ्राई करेंगे यार। नहीं उस दिन जो किया था उतना खराब नहीं था, खाने योग्य होता है टेस्टी होता है वो सत्वगुण है, रुचकर जो होता है वो सत्वगुण का है। तो शुगर सत्वगुण में रहता है, स्वीट जो है सत्वगुण में, और प्रभुपाद भगवद गीता के एक पहले अध्याय के प्रवचन में प्रभुपाद जी बताए कि स्वीट क्या है सत्वगुण में रहता है लेकिन उसको ज़्यादा खाने से इंटॉक्सिकेशन हो जाता है ना मोलासेस और उसके द्वारा ही ये सब शराब बनाते हैं गन्ने के रस से वो शराब वगैरह बनाते हैं शुगर फैक्ट्री में, तो इसलिए ज़्यादा स्वीट खाने से ऐसे वो नशा चढ़ जाता है, वो इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं ज़्यादा स्वीट खाना इंटॉक्सिकेशन, प्लेट भर के क्यों करते हैं थोड़ा बहुत खाना चाहिए उसका, जो अति ज़्यादा होता है वही रजोगुण का लक्षण। और क्या घर में भी चिल्ली नहीं खाना चाहिए सभी लोग नहीं है यहाँ पर बैठे हैं ना और कुछ ऐसे मैंने भी सुना था लेकिन प्रभु जी उसको गलत सिद्ध किए थे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।